ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः
यार ज्ञानशक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे
यार ज्ञानशक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे
ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕ ಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ
ಜಯ
ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ
ಕೀ ಜಯ
ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ
ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಪ್ರಭುಜೇಕ್ಷಾ ನಿಯಮ ಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಘ ಕೀ ಜಯ
यह शरीरधारी जीव शरीर को धारण करके अनादिकाल से चार गतियों में जन्म मरण करता हुआ परिभ्रमण कर रहा है। जीव के साथ जब तक शरीर का संबंध है तभी तक जन्म और मरण का भी संबंध है। जब इस जीव को शरीर मिलना बंद हो जाएगा तब जन्म और मरण भी करना बंद हो जाएगा। जब जीव को शरीर ही नहीं मिलेगा तो वह स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्रता में सुख है, परतंत्रता में दुख है। हम लोगों को स्वतंत्रता चाहिए क्या परतंत्रता रहने दें? परतंत्रता
स्वतंत्रता का मतलब
अनादि है। स्वतंत्रता तो एक बार भी नहीं मिली। हम सबको स्वतंत्र होना है। परतंत्रता में दुख है, परतंत्रता में यातनाएं हैं, परतंत्रता में आकुलताएं हैं, परतंत्रता में किसी भी प्रकार से शांति से बैठने का कोई अवसर ही नहीं। इसलिए हमें स्वतंत्रता की ओर बढ़ना है, यह लक्ष्य बना लेना चाहिए। और स्वतंत्रता मंजिल पर पहुंचने के बाद ही मिलती है। जब तक शरीर का, कर्मों का संबंध जीव के साथ रहेगा तब तक हम परतंत्र ही रहते हैं। पांच परमिष्टियों में ऐसे कौन से परमिष्टि हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं? सिद्ध परमिष्टि, इतना तो मालूम पड़ गया है। सिद्ध परमिष्टि एकदम स्वतंत्र हैं और बाकी चार परमिष्टि परतंत्र हैं। जो परतंत्र परमिष्टि होते हैं वो मोक्ष मार्ग पर रहते हैं, वो मार्ग में हैं, मंजिल में नहीं। हम भी परतंत्र हैं, ऐसा मत सोचना कि घर वगैरह छोड़ दिया है तो स्वतंत्र हो गए हैं। साधु परमिष्टि भी परतंत्र हैं। हाँ, ये बात अलग है, आप जितने परतंत्र हैं उतने हम नहीं हैं। हमको परिग्रह को लेकर के, जो 10 परिग्रह होते हैं, परिग्रह को लेकर के कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए हम 10 से स्वतंत्र हैं। हमको वो पकड़ नहीं सकते, हमको वो छू नहीं सकते, हम भी उनको नहीं छुएंगे। स्वतंत्रता हमारे जीवन में एक देश तो आ जाए, आंशिक रूप से तो आ जाए, और आंशिक रूप आएगा तो फिर पूर्ण रूप से भी आ सकता है। इसलिए हमने मंजिल को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता की साधना शुरू कर दी है। अब आप लोगों को क्या करना है आप सोचो। वहीं आ रहे, क्या करना है? स्वतंत्रता चळवळी शुरू करना है क्या? नहीं। हमारा जीव रूपी भारत परतंत्र हो गया है, जीव रूपी भारत परतंत्र हो गया है, और अंदर जो चेतना शक्ति वाला ज्ञान है वो गांधी जी है। जीव द्रव्य देश है, और जीव के भीतर जो ज्ञान है वह सब कुछ काम कर सकता है। उसके पास इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि वह जागृत होकर के एक बार बैठ गया तो चळवळी शुरू हो जाती है। लेकिन वही आज तक नहीं हुआ। जब आप स्वतंत्रता की इच्छा को रखते हुए पूरे मोक्ष मार्ग पर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो उस समय आत्मानुभूति होती है। आत्मानुभूति क्या होती है ये कई लोग प्रश्न करते हैं। आत्मानुभूति परतंत्रता में नहीं हो सकती। प्रारंभिक परतंत्रता तो हटना ही चाहिए, और प्रारंभिक परतंत्रता को हटाने के लिए गुण स्थानों में हमें बढ़ते 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 ऊपर उठना है। गुण स्थान कितने होते हैं? 14 होते हैं। स्वतंत्रता किस गुण स्थान से शुरू होती है? चौथे गुण स्थान से शुरू होती है, ये कहना चाहिए। हाँ, पहले के 3 गुण स्थानों में कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। क्या त्यागा है? कुछ भी नहीं त्यागा। प्रथम क्या त्यागना चाहिए? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के अधीन है क्या नहीं हम? मिथ्यात्व के अधीन होकर के हम दुखी हैं क्या नहीं? अवश्य दुखी हैं। अधीनता से ही दुख प्राप्त होता है, और अधीनता के त्याग से सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रारंभिक सुख जो होता है वह सम्यक्त्व का होता है। अपने जीवन में सम्यक्त्व आ गया तो समझ लेना स्वतंत्रता की यात्रा हमारी शुरू हो गई। और शुरू करना है, इसलिए ये सब पढ़ने के लिए बैठे हैं। गुणस्थान 14 होते हैं, इनका संक्षिप्त स्वरूप हमें समझना है। पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व गुणस्थान है। अगर आप कॉपी और पेन भी लाए हों तो 14 गुणस्थानों का नाम नोट कर ले, एक एक का स्वरूप मैं समझा देता हूं। सिर्फ नाम नोट करना है, क्योंकि ध्यान में नहीं आता है तो नीचे देखने के लिए हो जाएगा। मिथ्यात्व, ये कॉपी भी ले आया करें आप, बहुत अच्छा रहेगा कल से, हैं? स्वाध्याय करने वाले के हाथ में एक नोटबुक भी रहना चाहिए, कोई विशेष बात आती है तो लिखने के लिए अनुकूलता होती, चिंतन मनन के लिए भी वो अनुकूल हो जाता है। मिथ्यात्व जिनके पास है वो लिखें। मिथ्यात्व सांसादन, दूसरा गुणस्थान सांसादन, तीसरा मिश्र गुणस्थान, चौथा अविरत सम्यक्तु गुणस्थान, अविरत सम्यक्तु, अविरत सम्यक्तु, देश विरत गुणस्थान पांचवा, देश विरत गुणस्थान, प्रमत्त विरत गुणस्थान, अप्रमत्त विरत गुणस्थान सातवां, अप्रमत्त विरत गुणस्थान आठवां, अपूर्व करण गुणस्थान, अपूर्व करण गुणस्थान, अनिवृत्ति करण गुणस्थान, अनिवृत्ति करण गुणस्थान, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, उपशांत मोह गुणस्थान, उपशांत मोह गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान, संयोग केवली गुणस्थान, संयोग केवली गुणस्थान, अयोग केवली गुणस्थान, अयोग केवली गुणस्थान, ये 14 हो गए। हाँ, पहला वाला कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गुणस्थान मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनी कर्म के उदय से होता है। किसके उदय से होता है? दर्शन मोहनी कर्म के उदय से होता है। यह कर्म उदय में जब रहता है तब जीव, अब लिखने की जरूरत नहीं, अब तो एकाग्रता से सुन लो, एक एक नाम सामने रहे, आपको याद नहीं है तो सामने नाम रहेगा तो स्वरूप समझ में आता जाएगा। पहला गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। यह गुणस्थान दर्शन मोहनी कर्म के उदय से होता है। दर्शन मोहनी कर्म तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये पता चल गया है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व के उदय से ये गुणस्थान होता है। और दूसरा कौन सा है? नहीं, दर्शन मोहिनी के तीन कर्म कौन से हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व के उदय से कौन सा गुणस्थान होगा? पहला गुणस्थान होगा। और दूसरा, हाँ, सम्यक मिथ्यात्व, ये भी दर्शन मोहिनी कर्म है, इसका उदय हो जाए तो कौन सा गुणस्थान होगा? तीसरा गुणस्थान होगा। दूसरा नहीं, तीसरा मिश्र गुणस्थान उसका नाम है। देख लो तीसरा गुणस्थान का क्या नाम है, कन्फर्म हो गया? मिश्र गुणस्थान इसका नाम है। मिश्र नाम क्यों पड़ा? तो सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्तु और मिथ्यात्व दोनों परिणाम, मिश्र रूप परिणाम जहां पर होते हैं उसको सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। तो इसके लिए दोनों मिश्र रूप परिणाम के लिए मिश्र कर्म का ही उदय चाहिए। तो सम्यक मिथ्यात्व यह मिश्र दर्शन मोहिनी कर्म है जो मिश्रित परिणामों को उत्पन्न करा सकता है। ऐसे दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में होने वाला तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान जब कहलाता है तो इस गुणस्थान में रहने वाला जीव किस प्रकार के परिणामों को धारण करता है? दोनों रूप यानी मिथ्यात्व रूप भी सम्यक्त रूप भी दोनों को मिक्स करके मिश्रानुभूति करता है। जैसे दही में गुड़ मिला दिया, गुड़ तो मीठा होता है, दही खट्टा होता है, दोनों मिक्सिंग करेंगे तो न गुड़ का स्वाद आएगा न दही का स्वाद आएगा, दोनों से मिला हुआ मिश्रित तीसरा रूप स्वाद आएगा। तीन रूप हो गए, गुड़ का, दही का और मिश्र का। मिश्र यानी गुड़ नहीं, मिश्र यानी दही भी नहीं, मिक्सिंग हो गया तो तीन स्वाद अलग अलग बन गए। पहले गुणस्थान में रहेंगे तो दही का ही स्वाद आएगा, उसमें मीठापन कुछ भी नहीं है। तीसरे गुणस्थान में रहेंगे तो दही और गुड़ दोनों का स्वाद आएगा। और चौथे गुणस्थान में जाएंगे तो गुड़ का ही स्वाद आएगा। समझ में आ गया? चौथे गुणस्थान को अविरत सम्यक्त गुणस्थान कहा है। इस गुणस्थान में सम्यक्त रहता है, तो जहां जिस गुणस्थान में सम्यक्त है वहां पर गुड़ के समान मीठा ही स्वाद आएगा, और पहले गुणस्थान में खट्टा ही स्वाद आएगा, तीसरे गुणस्थान में खट्टा मीठा स्वाद आएगा। अब बीच में एक गुणस्थान छूट रहा है, दूसरा गुणस्थान सासादन। ये गुणस्थान कब होता है जीव को? तो कहते हैं ये गुणस्थान जो सम्यक दृष्टि जीव है ऊपर के गुणस्थानों में है, चौथे गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठा गुणस्थान, इन ऊपर के गुणस्थानों में है, तो वह गिर करके नीचे गुणस्थानों में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। सीढ़ी से चढ़ने वाला सीढ़ी से जब गिर सकता है तो गुणस्थान चढ़ने वाला क्या गुणस्थान से नहीं गिरेगा? गिरने का विधान है और चढ़ने का भी विधान है। तो छठे गुणस्थान से गिरने वाला भी सम्यक दृष्टि, पंचम गुणस्थान से गिरने वाला भी सम्यक दृष्टि, और चौथे गुणस्थान से गिरने वाला भी सम्यक दृष्टि। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव तीन प्रकार के सम्यक दर्शन को धारण करता है, यानी गुण तीन प्रकार के होते। सम्यक्त्व के भेद तीन हैं, उपशम सम्यक्त्व, क्षायोपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। तीन सम्यक्त्व हैं, इन तीनों सम्यक्त्वों को धारण करने वाला जीव चौथे गुणस्थान में भी हो सकता है, पंचम गुणस्थान में भी हो सकता है, छठे गुणस्थान में भी हो सकता है। तीन प्रकार के सम्यक्त्व हैं, लेकिन एक काल में तीनों को धारण नहीं करेगा, एक समय में एक ही सम्यक तो धारण कर सकेगा। चौथे गुण स्थान में उपशम सम्यक दृष्टि है तो उस समय उपशम सम्यक दृष्टि है, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि नहीं है। अब यह उपशम सम्यक तो प्रारंभिक सम्यक तो है, इसके उपरांत आपको क्षायोपशमिक सम्यक तो प्राप्त होगा, इसके उपरांत आपको क्षायिक सम्यक तो प्राप्त होगा, ये क्रम है। किंतु इसमें हाईएस्ट सम्यक तो जो उत्पन्न होने के बाद कभी छूटता ही नहीं, वो कौन सा सम्यक तो? वो क्षायिक सम्यक तो। अभी हम लोगों को पंचम काल में, ये कौन सा काल चल रहा है?
पंचम
काल कर्म भूमि है। इस समय हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं
हो सकती
है। तो हमको सबसे पहला प्रारंभ में सम्यक दर्शन अगर होगा तो कौन सा होगा? उपशम सम्यक दर्शन होगा। इसके पश्चात होगा तो कौन सा होगा? क्षायोपशमिक होगा। उसके पश्चात कौन सा होगा? क्षायिक होगा। क्षायिक पंचम काल में नहीं होगा, लेकिन होगा तो क्षायोपशमिक के बाद ही होगा। अभी पंचम काल में इन तीन में से कितने सम्यक दर्शनों को हम प्राप्त कर सकते हैं?
दो
उपशम सम्यक तो और क्षायोपशम सम्यक तो। हमको चाहिए क्या? नहीं ये
चाहिए।
हाँ, इसकी चिंता करनी चाहिए। वो ओरिजिनल हमारा वैभव संपत्ति ये है, इसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। धन संपत्ति तो हर हर भाव में हर जन्म में हम कमाते हैं, वो सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए कुछ नहीं। धन कितना भी कमा लो, आत्मा तो भूखा ही रहेगा। आप शरीर को खिला सकते, धन को नहीं, धन को देकर पदार्थ को। धन संपत्ति वैभव ये सब किस लिए कमा रहे हैं, कभी विचार किया? आत्मा के लिए या शरीर के लिए?
शरीर के लिए।
देखो शरीर जड़ है क्या? आत्मा चेतन है?
जड़ है।
शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। यही सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, ये समझ में आ गया ना, फिर गाड़ी पटरी पर आ जाती है। मूल वस्तु ही समझ में नहीं आई तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा सारा जीवन इसको समझे बिना ही चला गया है। किसी का 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 70 साल हो गया, 80 साल, 90 साल हो गया, हमको यही मालूम नहीं था अभी तक कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। ये भेद विज्ञान होना चाहिए कि नहीं? इसके बिना तो धर्म की शुरुआत हो ही नहीं सकती। हमको सात तत्वों की श्रद्धा करना, तत्वों का श्रद्धान करना है। सात तत्वों का पहला तत्व जीव तत्व है, जो शरीर से भिन्न है। वो जीव तत्व ही आत्म तत्व है, जो शरीर से एकदम भिन्न है। उस भिन्न चेतन तत्व, जीव तत्व, आत्म तत्व का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। और जिसको ये मालूम नहीं है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये मालूम ही नहीं है, तो वो कौन से गुणस्थान में रहेगा? मिथ्या तो गुणस्थान में रहेगा। मिथ्या दृष्टि कौन? जो तत्व का ज्ञान नहीं रखता, वो मिथ्या दृष्टि अज्ञान में है। तो तत्व का पहले तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, स्वाध्याय अध्ययन के माध्यम से पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान के बाद फिर हाँ ये पता चलता है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो आत्म तत्व का श्रद्धान करता है, शरीर तत्व जड़ समझ करके उसके प्रति जो रुचि रखता था, आसक्ति रखता था, मोह रखता था, उसको ही जीवन समझता था, उसको ही मैं समझता था। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, ऐसा समझता था। मैं शरीर हूं, शरीर सो मैं सो शरीर। शरीर को कुछ हो गया दुख तो वो मेरा दुख, शरीर को सुख मिल गया तो मेरा सुख। ऐसे शरीर और जीव आत्मा इन दोनों के बीच में रहने वाली भेद भिन्नता ये पता नहीं था। और ये कैसे पता चल गया? जिनेंद्र भगवान की वाणी से, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली प्रणीत धर्म मंगल है। मंगल क्यों है? मंगल का मार्ग बताता है। देखो संसार में कैसे झगड़े हैं, शरीर आत्मा मालूम नहीं है, दो अलग अलग हैं। सब शरीर के लिए ही लड़ रहे हैं, आत्मा के लिए कहीं भी कोई लड़ाई नहीं हो रही है। आत्मा के लिए लड़ाई करने वाले तो चौथे गुण स्थान से रहते हैं। आत्मा को प्राप्त करने की चिंता चौथे से प्रारंभ हो जाती है, इसलिए स्वतंत्रता का जो मार्ग है वह कहां से प्रारंभ? चौथे से। एक बंधन से आप छूट गए, मिथ्यात्व के बंधन से छूट गए, तो चौथे गुण स्थान में आ गए, स्वतंत्रता मिल गई ना। तो आपका हल्का महसूस होगा क्या? भारीपन महसूस होगा? हल्का। मिथ्यात्व छोड़ने के बाद बहुत आनंद आता है, क्योंकि थोड़ा सा 3-4 किलो सिर पर से भार उतर गया, हम हल्के हो गए। तो जितना जीव हल्का होता जाएगा उतना ही स्वतंत्र 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 होता जाएगा। आत्मा की चिंता करनी चाहिए, मैं कौन हूं, कहां जाना है, क्या कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, कहां पर फंस गया हूं, इसका तो चिंतन चलना ही चाहिए ना। क्या ये बेकार है? इसको बेकार समझने वाले बहुत 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 दूर हैं, जीवन से ही दूर हैं वो। मानवीय जीवन से भी बहुत दूर हैं, मानवीय जीवन को भी ठीक से नहीं जी सकेंगे, क्योंकि शरीर के लिए सब कुछ करेंगे वो, और शरीर को ही मैं हूं आत्मा हूं ये समझेंगे, तो फिर उनको दूसरे को दुख देना, हिंसा देना, पीड़ा देना, इसमें दया भाव नहीं हो सकता। दया नहीं आ सकती। दया क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि शरीर दिखता है और शरीर में शरीर को मार रहे हैं, शरीर को दुख दे रहे हैं, तो उनको ऐसा मालूम नहीं होता कि उसमें जीव है। जीव नामक वस्तु का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे लोग क्या कल्पना करते हैं, शरीर ही जीवन है। जीव नहीं कहते वो, शरीर ही जीवन है। ऐसे लोग क्या कल्पना करते हैं, शरीर जब उत्पन्न होता तो उसमें प्राण आते हैं, यानी शरीर जो गर्भकाल में गर्भावस्था में निर्मित हो गया, वो शरीर के परमाणु ही उसके प्राण। जीव अलग है ऐसा नहीं, शरीर ही प्राण। और शरीर मिट गया तो जीवन मिट गया, जीव मिट गया, शरीर ही जीव है ना, जीव मिट गया, और फिर उत्पन्न होगा क्या? नहीं नहीं, उत्पन्न नहीं हो सकता। मिट गया तो मिट गया, जैसे दीपक जल रहा था और बाती जल रही थी, ज्योति थी, दीपक के बाती के साथ ज्योति थी, ज्योति दिख रही थी, हाँ बुझा दिया आपने, ज्योति चली गई। कहाँ चली गई? आकार तो था उसका, मोमबत्ती जलाया था, आकार तो था, वो ज्योति कहाँ गई? गायब हो गई। ना ऊपर जाते हुए देखा, ना इधर उधर जाते हुए देखा, बस गायब हो गए। ऐसे जीव के परिभाषा को मानते हैं, शरीर मिट गया तो जीव भी मिट गया, शरीर ही जीव है। इसलिए शरीर से भिन्न जीव को नहीं समझना चाहिए, शरीर ही जीव है। जीव मिट गया तो शरीर मिट गया। जीव और शरीर में भेद भिन्नता समझते नहीं है, किंतु केवली भगवान ने क्या बताया, शरीर अलग वस्तु है और जीव आत्मा अलग वस्तु है, इसको शरीर से भिन्न श्रद्धान करना चाहिए। मरने के बाद उसका अस्तित्व रहता है, उसका विनाश नहीं होता, ये जैन दर्शन की विशेषता है। अन्य दर्शनों में देखो, जिन कई ऐसे दर्शन हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, पुनर्जन्म, और ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ पर जैन समाज में उत्पन्न आत्माएं हैं उनको भी ये भ्रम हो सकता है कि महाराज पुनर्जन्म होता है क्या, नहीं शंका हो सकती कि नहीं, हो सकती है, होती है। जब कुछ भी मालूम नहीं रहता है तो हमको पुनर्जन्म भी मालूम नहीं है और ये जन्म भी मालूम नहीं, वो तो पूछेगा ही कि महाराज पुनर्जन्म होता है क्या नहीं। तो केवली भगवान बताते हैं पुनर्जन्म है। इसको कैसे पता लगाएं, तो आप तो पता नहीं लगा सकते, पता लगाने के योग्य आप बन जाएं तो पता भी लग सकता है, लेकिन अभी तो पता नहीं लगेगा। अभी कोई सामने मर रहा है तो उसकी आत्मा कहां चली गई, देखने की आपकी कैपेसिटी नहीं है। वो जो जा रहा है शरीर को छोड़ करके जा रहा है, जहां पर जाकर के जन्म ले लेता है वहां दिखता नहीं था, वहां जाने के बाद भी नहीं दिखा और यहां रहने के बाद भी नहीं दिखा और जाते हुए भी नहीं दिखा। वो स्वयं को भी पता नहीं रहता कि मैं जा रहा हूं। आपको मालूम है क्या, कई शरीर त्यागा, कई शरीर त्याग करके आप छोड़ करके आए हैं, आते समय मालूम था क्या, मैं विग्रह गति से आया, स्वर्ग से आया, अभी तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये किसी को पता ही नहीं चलता, छद्मस्त रहने तक ये पता नहीं चलेगा, केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा ना तो सभी जीव आते हुए जाते हुए दिखाई देंगे, केवल ज्ञान में दिखाई देंगे। तो केवल ज्ञान में दिखाई देते हैं, इसलिए केवली भगवान ये सब देख करके, प्रत्यक्ष देख करके उन्होंने उपदेश हम लोगों को दिया है, और उस पर हम जो श्रद्धान करते हैं वो हमारा सम्यक्त्व है। केवली भगवान की वाणी पर श्रद्धान करना यही सम्यक दर्शन है, यही चौथा गुणस्थान है। केवली भगवान ने बताया शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसे श्रद्धान कर लिया क्या, पूछते हैं वो, कर लिया तो शरीर यहीं पड़ा रहेगा और जीव पुनर्जन्म लेने के लिए अन्यत्र जाएगा, यदि जाएगा तो पुनर्जन्म के लिए जाएगा, पुनर्जन्म के लिए नहीं जा रहा है तो फिर मोक्ष जाएगा। दो ही गति हैं, जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, जाएगा तो पुनर्जन्म लेने के लिए और किसी शरीर में जाएगा, और कहीं भी नहीं जा रहा है तो मोक्ष जाएगा। दो ही रास्ते हैं, लेकिन यह केवली भगवान की वाणी जिसको पता नहीं उनको पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं होता, तो वो क्या कहते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता जब तक ये शरीर है, यही जीव है, खाओ पियो मौज उड़ाओ मस्त जीवन जियो और अंत में शरीर को छोड़ दो, ऐसा नहीं कहते हैं, अंत में मर जाओ। छोड़ने के लिए जाना थोड़ी है, तो मरना है, मिटना है, मिट जाओ, खाओ पियो और मिट जाओ। तो आप सोचें कैसा श्रद्धान करना है, पुनर्जन्म है इस पर श्रद्धान करना है कि पुनर्जन्म है ही नहीं इस पर श्रद्धान करना है, पुनर्जन्म है ना, है, लेकिन लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता, प्रश्न उठता है यहां, पुनर्जन्म है इस पर विश्वास क्यों नहीं उठता, क्योंकि कहां से आए ये भी पता नहीं, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं, और मरण के वक्त भी ये पता नहीं चलता कि मैं कहाँ जा रहा हूं। लेकिन आत्मा का अस्तित्व रहता है, कहीं ना कहीं जाता है वो, और जाने से पहले कहाँ जाना है यह निश्चित कर लेता है, यहीं पर निश्चित होता है। इसी शरीर में रहते रहते निश्चित होता है, रिजर्वेशन होता है आगे का। ऐसा नहीं कि मर गया और जहां जगह मिलता है ढूंढ करके वहां बैठ गया, ऐसा नहीं होता। रिजर्वेशन यहीं से होता है। आप जैसे टिकट रिजर्वेशन करते हैं रेलगाड़ी में, आपका डिब्बा, आपका नंबर, आपका दिन, आपका वार, आपका टाइम, सब रिजर्वेशन। ये बहुत आवश्यक है चिंतन मनन करना, ये दार्शनिक विषय है, और इसके बिना जीवन में कोई भी सुखी नहीं बन सकता। धन संपत्ति सब क्षणिक है, इसमें हम हाई स्टैंडर्ड का जीवन जी रहे हैं। कोल्हापुर में कहां रह करके कोल्हापुर में भी हाई स्टैंडर्ड कॉलोनी में रहकर लोग हमको कई लोगों ने कहा, महाराज ये एक कॉलोनी ऐसी है, यहाँ पर बहुत सुख है, इतने रास्ते अच्छे, इतने पेड़ पौधे, इतना ऑक्सीजन इतना कॉलोनी अच्छी है ये, कि यहाँ पर रहने वाले लोग भी इतने स्टैंडर्ड के हैं, बहुत बहुत स्टैंडर्ड के हैं। मैंने कैसे कौन रहते हैं यहाँ, यहाँ पर हाई फाई लोग रहते हैं। मैंने कहा हाई फाई लोगों के बीच में एक हाई फाई महाराज भी चाहिए। हमको भी वही आनंद आएगा, और उनका हाई फाई जीवन और हमारा भी हाई फाई जीवन, दोनों का मिलान होगा। तो हाई फाई कौन किनका हाई फाई अच्छा है ये समझ में तो आएगा। दो जीवन हैं, शरीर की अपेक्षा से, शरीर शारीरिक सुख की अपेक्षा से, धन वैभव की अपेक्षा से, घर मकान कॉलोनी की अपेक्षा से हम हाय फाय। ये भौतिक जीवन है या परमार्थ? ये भौतिक जीवन है, ये शारीरिक जीवन है। शरीर के लिए जीवन जी करके मरण करना ये कोई विशेष बात नहीं है, सामान्य बात है। एकेंद्री भी जी रहा है, द्विइंद्री भी जी रहा है, चतुरेंद्री, पंचेंद्री, पशु भी जी रहा है ये जीवन, वो भी भौतिक जीवन को ही हाई फाई बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। लेकिन परमार्थ उसके जीवन में सद नहीं सकता। मनुष्य शरीर ही, मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें परमार्थ के ज्ञान को पाकर परमार्थ की साधना वो कर सकता है। ऐसी साधना हमें करना है, कितनी अच्छी बात होगी। ऐसा हाई फाई जीवन इस कॉलोनी को छोड़कर किसी का कहीं भी नहीं है, तो दोनों दृष्टि से हम हाई फाई, डबल हाई फाई रहेंगे ना।
कॉलोनी भी हाई फाई और जीवन हाँ,
कॉलोनी भी हाई फाई, भौतिक जीवन भी हाई फाई, परमार्थ जीवन भी हाई फाई, और दोनों ही नहीं रहेंगे तो हाय हाय। ये भी नहीं और वो भी नहीं, चक्रवर्ती का जीवन एकदम हाय फाय, षटखंडाधिपति, भौतिक जीवन के चरम सीमा पर, चरम शिखर पर जी रहे हैं। एक तरफ तो हाय फाय थे, लेकिन जन्म लेते समय सम्यक्त्व के साथ जन्म लेते हैं चक्रवर्ती, परमार्थ जीवन को समझते हुए जन्म लेते हैं। पूर्व भव में ही वो परमार्थ के जीवन को समझकर यहां आए, मनुष्य जीवन में आए। मनुष्य जीवन जीते समय परमार्थ को छोड़ करके मनुष्य जीवन नहीं जिया किसी भी चक्रवर्तियों ने। और हमको थोड़ी बहुत धन संपत्ति मिल जाती है तो हम डूब जाते हैं, एक पक्ष में ही डूब जाते हैं, मगनता आ जाती है हमें, धन का मद आ जाता है अपने पास। चक्रवर्ती को इतना सब मिलने के बाद भी धन का मद जागृत नहीं होता। चक्रवर्ती ज्ञानी और सामान्य लोगों से हाय फाय स्टैंडर्ड का जीवन जीने वाले, धन आने पर धन का मद अगर ना हो अपने जीवन में तो समझ लेना उस व्यक्ति के पास जीव क्या है और शरीर क्या है ये परमार्थ का ज्ञान अवश्य है। ये ज्ञान होता है तो ही मद नहीं आता, और ज्ञान नहीं होता है तो कभी मद आ भी जाता है और कभी नहीं भी आता है। धन जीवन का एक साधन मात्र है, उसको लेकर के क्या घमंड करना। लेकिन जीव को होता है, ये बार बार होता है, मैं इतना धनवान, मैं इतना धनवान, मैं स्टैंडर्ड, सबसे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड खड़े रहो वहीं स्टैंड पर। जो अपना नहीं, अपना है ही नहीं, उसको लेकर के हम कषायवान हो जाते हैं, घमंड आ जाता है, अपना है ही नहीं। और जो अपना है, वास्तविक संपत्ति है, उस पर कभी घमंड नहीं होता। असली संपत्ति सम्यक दर्शन, असली संपत्ति सम्यक ज्ञान, असली संपत्ति सम्यक चारित्र, इसको प्राप्त करने वाले इस संपत्ति पर घमंड करते। मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक ज्ञानी, मैं संयमी, चारित्रवान, तपस्वी, ऐसा घमंड करेंगे? नहीं। असली वैभव पाने के उपरांत ये मान कषाय सता नहीं सकता। क्यों नहीं सताता? उसका कारण ये है, असली संपत्ति मिल गई है तो मान कषाय क्या है ये भी मालूम है उनको। मान कषाय सो आत्मा नहीं, आत्मा सो मान कषाय नहीं। मैं अलग हूं और ये कषाय अलग है, कषाय पर है और मैं पर से भिन्न आत्मा हूं, चेतन हूं, इसलिए पर के ऊपर मैं घमंड नहीं कर सकता। और अपने पास जो है उसका भी क्या घमंड करना, और उसको घमंड करने के लिए भी कषाय का उदय चाहिए। अब वो उदय में नहीं है, कषाय उदय में नहीं है तो घमंड क्यों आएगा? नहीं आ सकता। मैं चारित्रवान, इस प्रकार का घमंड भी नहीं आना। और साधु को आ गया, रत्नत्रय धारी साधु, साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, इनको आ गया तो फिर आत्मा और कषाय में भेद भिन्नता का विज्ञान नहीं है। परमार्थ मार्ग को साधने वाला साधु फिर नहीं माना जाएगा। साधु बनने के बाद हमें किसको जीतना है? संयम के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, और संयम के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, और सम्यक्तों के माध्यम से किसको जीतना है, किससे लड़ना है? कषाय से लड़ना है। चार ही कषाय हैं, मान से लड़ना है, माया से लड़ना है, लोभ से लड़ना है, क्रोध से लड़ना है। चार कषाय से लड़ना है। और लड़ने वाला कौन?
चेतन,
ज्ञान। ज्ञान ही मैं हूं। ज्ञान संवेदनशील वस्तु है जीव के भीतर। आत्मा में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन ज्ञान और दर्शन ये दो गुण ऐसे होते हैं जो चेतन माने जाते हैं, संवेदनशील रहते हैं। बाकी में संवेदनशील होने की शक्ति नहीं होती। समझ रहे हैं ना? एक विशेष बात, आत्मा है, आत्मा में ज्ञान और दर्शन दो गुण ऐसे हैं जो चेतन माने जाते हैं, बाकी सब अचेतन है। आत्मा चेतन है ये कहा जाता है, किसकी अपेक्षा से? ज्ञान की अपेक्षा से और दर्शन की अपेक्षा से चेतन है। बाकी गुणों की अपेक्षा से वह चेतन नहीं है। और आत्मा में गुण कितने होते हैं मालूम? अनंत, अनंत गुण होते हैं। आत्मा अनंत गुणों का धाम है, अनंत गुणों का एक पिंड है। उन अनंत गुणों में से दो गुण ही ऐसे हैं जो एक ज्ञान माना जाता है और एक दर्शन माना जाता है। ज्ञान और दर्शन ये दोनों चेतन हैं। जो भी काम करेंगे अच्छे बुरे, वो किसके माध्यम से संपन्न होते हैं? ज्ञान और दर्शन के माध्यम से संपन्न होते हैं, अन्य गुणों के माध्यम से नहीं। क्योंकि ज्ञान जानने का काम करता है, दर्शन देखने का काम करता है। जैसे आपने आंख मिच करके बैठा था और सडनली आंख खोल दिया, पहला देखा क्या जाना? पहला देखा, सडनली आंख खोल दिया, पहले वस्तु को आपने देखा क्या जाना? देखा। देखने का काम पहला होता है, फिर देखने के बाद ये क्या है इस प्रकार जानने का काम शुरू होता है। क्या है ये, ऐसा प्रश्न आते ही जानने का काम शुरू हो गया। आंख खोल दिया, दिखाई दिया, ये देखने का काम हुआ। फिर ये क्या है, जानने का कार्य शुरू हो गया। ज्ञान और दर्शन दो ही यहां पर जानने, जानते देखते हैं। देखो, देख रहे हैं ना? हाँ, यही दर्शन है। देखो कहने से देखा के नहीं, ये दर्शन हो गया, ये दर्शन गुण हो गया, ये भी चेतन है। समझो? बताओ कहने लगे तो समझने के लिए तैयार हैं। जो समझने के लिए तैयार हो गया है वो ज्ञान है। समझो, ऐसा कहा तो बताओ महाराज, बताओ तो जानने के लिए तैयार हो गया वो ज्ञान है, ये ज्ञान गुण है। दर्शन और ज्ञान ये दो ही हैं, और ये सब बेसिक ज्ञान होना चाहिए अपने पास। ज्ञान क्या करता है, दर्शन क्या करता है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये सब बेसिक है। इस बेसिक के बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते। एक-एक चीजें ज्ञान में आती जाएं तो चिंतन भी अपना सही दिशा में चलने लगता है। चिंतन के लिए ज्ञान चाहिए, समझदारी चाहिए, और जैसे जैसे चिंतन होगा वैसा वैसा आत्मकल्याण का मार्ग खुलता जाएगा। ज्ञान आने के बाद किसी भी जीव को घमंड आ नहीं सकता, अहंकार उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो समझदार हो गया। कषाय करने में कुछ भी सार नहीं है। कषाय करना अज्ञानता है, और हम अज्ञान के कारण से कषाय करते थे। इस कषाय करने में कोई भी तथ्य नहीं है, वो वीतरागी बन जाता है। लोग पूछते हैं महाराज, क्रोध को कैसे जीते, मान को कैसे जीते, माया को कैसे जीते? ये तो जीतना बहुत कठिन लगता है, असंभव सा लगता है, असंभव ही है। जिसको ज्ञान नहीं है उसको असंभव है, और जिसको ज्ञान आ गया उसको बहुत संभव है, बहुत सरल है। लेकिन ज्ञान आने के बाद ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित वो होगा। तो अपना क्या चल रहा था, गुणस्थान। गुणस्थान 14 होते हैं, 3 गुणस्थानों का परिचय मिल गया। पहले गुणस्थान में रहने वाला जीव शरीर और आत्मा को भेद भिन्न समझता नहीं है। दूसरे गुणस्थान में समझता तो है, लेकिन वह अविश्वास करके नीचे आ रहा है। पुनः विश्वास में आया था, सम्यक तो भी प्राप्त किया था, और गिर गया, वो नीचे गिर गया। किस कारण से गिरा? पुनः विश्वास में डगमगाने लगा। तत्व का ज्ञान हो गया था, लेकिन तत्व में ही संशय पैदा होने लगा। उस समय क्या हुआ, चतुर्थ गुणस्थान से नीचे आया है। तो नीचे आने वाला ही दूसरे गुणस्थान में आता है, नीचे से ऊपर चढ़ने वाला दूसरे गुणस्थान में नहीं आता। एक विशेष बात है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा गुणस्थान उतरते समय, ऊपर से उतरते समय होगा या नीचे से चढ़ते समय होगा, हाँ ये ध्यान में रखना है। ऊपर से नीचे आते समय होगा, वो चौथे से गिरेगा तो सीधा दूसरे में गिरेगा, तीसरे में नहीं गिरेगा। कौन, ये प्रश्न उठता है, तो सम्यक दृष्टि। कौन सा सम्यक दृष्टि? तो उसमें पहले नंबर वाला उपशम सम्यक दृष्टि। उपशम सम्यक दृष्टि ऊपर से नीचे गिरेगा तो दूसरे गुणस्थान में ही गिरेगा, तीसरे गुणस्थान में नहीं गिरेगा, और सीधा पहले गुणस्थान में भी नहीं गिरेगा। जो पहले नंबर का सम्यक दृष्टि है, उपशम सम्यक दृष्टि, वह चौथे गुणस्थान से गिरेगा तो सीधा दूसरे में ही आएगा। तो दूसरे गुणस्थान का नाम क्या है? सासाधन। सासाधन का अर्थ होता है आसाधना से सहित होना, सासाधन। आसाधना यानी विनाश, सम्यक्त के परिणामों को जिसने नष्ट कर दिया है, विनाश कर दिया है, आसाधना कर दी है, उस आसाधना के भावों से जो सहित हो गया है, वह सासाधन गुणस्थान में आएगा। सम्यक तो नष्ट हो गया, दूसरा गुणस्थान उत्पन्न हो गया। ऐसा नहीं होता कि नष्ट वहीं कर दिया और यहां आने के बाद सासाधन हो गया, ऐसा नहीं। सम्यक तो के परिणाम जहां समाप्त हो गए वहां तक चौथा गुणस्थान, और जहां तत्व का अश्रद्धान हो गया वहां से दूसरा गुणस्थान, ऐसा। चतुर्थ गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक। तो देखिए, अविरत सम्यक तो चौथा गुणस्थान है। इस गुणस्थान में तीनों प्रकार के सम्यक दृष्टि रह सकते हैं, उपशम सम्यक दृष्टि, क्षायोपशम सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि। तीनों सम्यक दृष्टि जीव रह सकते। पंचम काल में कितने सम्यक दर्शन है?
दो।
कितने वैभव प्राप्त हो सकते हैं? दो वैभव प्राप्त हो सकते हैं। पंडाल में एक ही वैभव है। लेकिन फिर भी उनको दो वैभव प्राप्त हो सकते हैं। असली वैभव वो चाहें तो दो प्राप्त करना संभव है, और तीसरा वैभव चारित्र का, वो भी चाहें तो भी प्राप्त हो सकता है। रेलगाड़ी बिल्कुल पटरी पर आकर के खड़ी है, वहां पर खड़ी है जहां से मुड़ना है मंजिल की ओर, विचार किया जा सकता है गाड़ी को किधर ले जाना है। क्या है, शरीर के लिए सोचना है कि आत्मा के लिए? आत्मा शाश्वत है, सुखी दुखी वही होता है, इसलिए उपदेश है, दुख को मिटाओ और सुखी बनो, दुख को मिटाओ और सुखी बनो, ये उपदेश दिया जा रहा है। आत्मा का दुख आत्मा में क्यों है? शरीर के वजह से है। हम शारीरिक जीवन जीने का लक्ष्य बना लेते हैं तो दुख की प्राप्ति होती है, और आत्म साधना की ओर बढ़ने का लक्ष्य बना लेते हैं तो दुख समाप्त होने लगता है और सुख की ओर हम बढ़ते हैं। कितना अच्छा अवसर मिला है मानव पर्याय का, मनुष्य शरीर का। इसके भीतर हम जन्मे हैं तो इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। थोड़ा सा आत्म ध्यान, थोड़ा सा स्वाध्याय, प्रवचन, इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये आध्यात्मिक जीवन है। जीवन को अध्यात्ममय बनाओगे तो दुख कुछ नहीं होगा। अज्ञानी जीवों में कितनी कितनी सारी भ्रम बुद्धि में बैठी हुई हैं। अरे आध्यात्मिक ओर जाओगे तो धर्मात्मा बन जाओगे, तो धर्मात्मा बनने में क्या नुकसान है? क्या धर्म क्या नुकसान करेगा? क्या धर्म तो संसार में और चार चांद लगा देता है। संसारी जीव घर में रहते हुए भी धर्म करेगा तो धर्म इतना आनंदमय जीवन भर देगा कि वह घर में ही मरण करे, लेकिन अध्यात्म के साथ, धर्म के साथ। और घर में रहते हुए दो धर्म आ सकते हैं, पंचम गुणस्थान वाला धर्म और चतुर्थ गुणस्थान वाला धर्म, दो धर्म आ सकते हैं आपके पास, वो भी आध्यात्मिक जीवन ही है। धर्म का अर्थ ये नहीं कि साधु बनना और तपस्वी बनना। कई लोगों की धारणा ऐसी है कि धर्म की ओर जाएगा तो साधु बन जाएगा, बहुत अज्ञान में है वो, समझते नहीं है। घर में रहते हुए भी कल्याण है कि नहीं है? तो क्या हो करके जीना? नित्य स्वाध्याय करना, देव शास्त्र गुरु को ही भजना, सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र को भजना, ये अध्यात्म है, ये आध्यात्मिक जीवन। और आत्म तत्व का चिंतन करना, मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, और ये परिवार क्या है, ये वैभव क्या है, धन संपत्ति क्या है, इस संबंध में चिंतन करना, और मेरे लिए कर्तव्य क्या है, अब ये सब कुछ है मिला हुआ, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, इसका चिंतन करना। ये चिंतन नहीं हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है, चिंतन अवश्य हो सकता है, लेकिन इस चिंतन को करने के लिए जिनवाणी का ज्ञान अवश्य चाहिए ही। तो ऐसे ज्ञान को हम पाएंगे। गुणस्थान का कथन समाप्त हुआ, 9:05 हुए, शेष विषय कल।